नमस्कार भारत, गुरुवार 28 जुलाई, मैं हूं निखिल रंजन। मध्य प्रदेश में मुस्लिम महिलाओं के साथ मारपीट के बाद राजनीति तेज, विपक्ष ने सरकार को बताया दोषी।
अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद सरकार को मुआवजा देना चाहिए, उनसे माफी मांगना चाहिए और मगरमच्छ के आंसू बहा के जो मध्य प्रदेश का माहौल खराब करने के लोग प्रयास में।
गुजरात में दलितों की पिटाई पर एक लेखक ने लौटाया राज्य सरकार का पुरस्कार। असम के साथ ही अब बिहार के 8 जिलों में फैला बाढ़ का प्रकोप, कई लाख लोग प्रभावित।
पानी में खड़ा हुआ है, माल मवेशी हम लोगों से बीमार हो गया है, पानी में खड़े खड़े अभी तक हम लोगों को कोई सामान।
बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह अभी पुलिस की पकड़ से दूर, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में गिरफ्तारी से बचने की याचिका पर सुनवाई। खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार, संदीप सोनी से। भारत के एक राज्य मध्य प्रदेश में राजस्थान की सीमा से सटे मंदसौर जिले में कथित गौमांस रखने के लिए दो मुसलमान महिलाओं के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट करने वालों का संबंध स्थानीय गौरक्षक समितियों से बताया जा रहा है। खबरों के मुताबिक शुरुआती जांच से पता चला है कि महिलाओं के पास जो मांस था वो गाय का नहीं बल्कि भैंस का था। इस मुद्दे की गूंज संसद में भी सुनाई दी है, जहां विपक्षी दलों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आड़े हाथों लिया है। ईमेल हैकिंग संबंधी विवाद की पृष्ठभूमि में डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन ने अपने रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी डोनाल्ड ट्रंप पर अमरीकी सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि रूस हिलेरी क्लिंटन का अकाउंट हैक करके संवेदनशील हजारों ईमेल्स हासिल कर सकेगा।
But it would be interesting to see. I will tell you this. Russia, if you're listening,
ये देखना दिलचस्प होगा। रूस यदि इस बात को सुन रहा है तो मैं आशा करता हूं कि उसे वो 30,000 ईमेल मिलेंगे जिनका कहीं अता पता नहीं है, और मुझे लगता है कि इसके लिए हमारा मीडिया आपको काफ़ी जगह देगा। ये थे डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। वहीं इस पूरे मामले पर रूस ने कहा है कि वो किसी दूसरे देश के अंदरूनी मामले में कभी दखल नहीं देगा। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। तुर्की के अधिकारियों ने बीती 15 मई को तख्तापलट की नाकाम कोशिश के बाद कई मीडिया संगठनों को बंद करने की घोषणा की है। तुर्की में 3 न्यूज एजेंसियों, 16 टीवी चैनलों, 45 अखबारों और 15 पत्रिकाओं को बंद करने का आदेश दिया गया है। अधिकारियों ने 47 पत्रकारों को हिरासत में लेने का आदेश भी दिया है। कुछ दिन पहले 42 पत्रकारों के खिलाफ भी वारंट जारी किया गया था। स्थानीय मीडिया ने तुर्की के अधिकारियों के हवाले से खबर दी है कि नई सूची में अधिकतर पत्रकार जमान अखबार के हैं, जिसे बंद कर दिया गया है। फ्रांस में कई प्रमुख मीडिया संस्थानों ने कहा है कि वो चरमपंथी हमलों के जिम्मेदार हत्यारों की तस्वीरें अब नहीं छापेंगे। दैनिक अखबार लेमोंड का कहना है कि इस बात की पूरी संभावना है कि चरमपंथी हमला करने वालों का उनकी मौत के बाद गुणगान किया जाएगा, इससे बचने के लिए उनकी तस्वीरें ना छापना ही बेहतर है। फ्रांस में बीते हफ्ते चरमपंथी घटनाओं में 85 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पोप फ्रांसिस ने कहा है कि यूरोप में हाल के दिनों में जिस तरह से एक के बाद एक कई जिहादी हमले हुए हैं, वो इस बात के सबूत हैं कि दुनिया में एक तरह से युद्ध की स्थिति बन गई है। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी इस बात का ये मतलब हरगिज नहीं है कि ये युद्ध धर्मों का युद्ध है। पोप फ्रांसिस पोलैंड की 4 दिन की यात्रा पर हैं, जहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत, आज गुरुवार है और बीबीसी रेडियो की पहली सभा लेकर आज आपके साथ हूं मैं, निखिल रंजन। तो शुरुआत उस खबर से करते हैं जो कल से ही सुर्खियों में छाई हुई है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में कल 2 मुस्लिम महिलाओं के साथ बीफ रखने के शक में मारपीट हुई, उसके बाद अब राज्य में राजनीति तेज हो गई है। इस मामले में सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन विपक्ष अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के लिए सरकार को दोषी मान रहा है। पूरा हाल सुनिए शुरे न्याजी की रिपोर्ट में, जो भोपाल से आई है।
मध्य प्रदेश के मंदसौर स्टेशन पर 2 मुस्लिम महिलाओं के साथ हुई मारपीट के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। विभिन्न टेलीविजन चैनलों में इन महिलाओं के साथ की गई मारपीट की तस्वीरें चलने के बाद इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। मंगलवार को इन महिलाओं के साथ कथित हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने उनके पास गौमांस होने के शक में पिटाई कर दी थी। बाद में पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। उनके पास से 30 किलो मांस बरामद किया गया जो जांच में गौ मांस नहीं निकला। इस मामले को लेकर दिल्ली के साथ ही भोपाल में भी विपक्षी पार्टी ने सरकार को अपने निशाने पर लिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रदेश में भाजपा और उससे जुड़े संगठन कानून हाथ में लेकर लोगों के बीच डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं। कांग्रेस विधायक आरिफ अकील ने कहा,
मंदसौर में दो महिलाओं को गिरफ्तार किया, उन पे इल्जाम वो यूपी की तरह लगाया कि इनके पास जो गोश है वो गाय का है। उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई, उसमें पुष्टि हो गई इस बात की वो गाय का नहीं भैंस का गोश है। उन महिलाओं को मारा, उनको बंद कर दिया। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद सरकार को मुआवजा देना चाहिए, उनसे माफी मांगना चाहिए और मगरमच्छ के आंसू बहा के जो मध्य प्रदेश का माहौल खराब करने के लोग प्रयास में है, मैं आप लोगों के माध्यम से उनसे कहना चाहता हूँ कि भैया माहौल खराब करने का प्रयास मत करो। जो जो शैतानी करे जो उसको सजा दो, लेकिन सबको सजा देने का कोई अधिकार आपको नहीं।
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह जो पहले दावा कर रहे थे कि इस पूरे मामले में कोई रैकेट काम कर रहा है जो मीट की तस्करी करवाता है, वो अब महिलाओं को निशाना बनाने वालों के खिलाफ जांच की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
मंदसौर में जो रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तारी हुई है उसमें बफेलो का मीट पाया गया है, मैंने जांच के आदेश कर दिए हैं और उसमें जांच रिपोर्ट के आधार पर जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। देखिए बफेलो का मीट जो है इसमें हमारे राज्य में परिवहन पर प्रतिबंध है, हम लोगों ने इसके लिए विधानसभा से अध्यादेश विधेयक पारित किया हुआ है और इसमें हम परिवहन नहीं कर सकते, परिवहन करते हुए पाए जाते हैं तो उस पर कार्रवाई का प्रावधान।
वहीं पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं, जब हिंदू संगठन के लोग कानून को हाथ में ले रहे थे उस वक्त पुलिस खड़े होकर देख रही थी। मंदसौर पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा ने कहा,
सामाजिक समस्या है कि कानूनी समस्या भी है, लोगों को संयम से काम लेना चाहिए और किसी भी हालत में कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए और शनि शनि इस प्रवृत्ति को सर्व संबंधितों के माध्यम से हतोत्साहित करने का हर संभव प्रयास किया जाए।
इससे पहले भी मध्य प्रदेश के हरदा में एक मुस्लिम दंपत्ति के साथ बीफ रखने के शक में ट्रेन में मारापीटी की जा चुकी है। शुरहन्याजी, बीबीसी न्यूज भोपाल।
ये तो हुई मध्य प्रदेश की बात। इधर इस बीच गुजरात के ऊना में मृत गायों की खाल खींचने वाले दलित युवाओं की पिटाई के मुद्दे पर दलित लेखक अमृतलाल मकवाना ने राज्य सरकार से मिले पुरस्कार को वापस लौटा दिया है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि उसे दलितों से कोई सहानुभूति नहीं है। मकवाना को साल 2012-13 में दासी जीवन श्रेष्ठ दलित साहित्य कृति अवार्ड दिया गया था। हमारी सहयोगी सुशीला सिंह ने अमृतलाल मकवाना से बात की और पूछा कि पुरस्कार लौटाने के पीछे उनकी क्या मंशा है।
हाल ही में गुजरात के अंदर जो ऊना के अंदर दलितों पर अत्याचार किया गया, उसी अत्याचार के घटना को देखते हुए मैंने ये मेरा अवार्ड वापस किया, क्योंकि मैं एक दलित साहित्यकार हूँ, दलितों की वेदना एवं संवेदना साहित्य के माध्यम से समाज के सामने रखता हूँ और इसी माहौल में अगर दलितों पर यूं ही अत्याचार होता रह रहा है तो उससे मैं बहुत दुखी हो गया और दुखी होके मैंने ये मेरा अवार्ड जो है मैंने राज्य सरकार को वापस करके मेरा दुख जाहिर किया है, मेरा रोष प्रकट किया है।
इस रोष से क्या होने वाला है? पुरस्कार आपने वापस तो कर दिया, लेकिन क्या दलितों को उनका हक मिल पाएगा इससे?
ये जो समस्या है वो हाल ही की समस्या नहीं, ये सदियों पुरानी दलितों के ऊपर हो रही समस्या है, लेकिन एक सामाजिक उत्तरदायित्व को ध्यान के में रखते हुए मैंने ये वापस किया है। उसका क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या होगा, वो तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरा एक साहित्यकार के नाते मैंने मेरी फर्ज अदा की है, मेरा सामाजिक उत्तरदायित्व था वो मैंने जाहिर किया है।
क्या आपको नहीं लगता कि आपको पुरस्कृत किया गया था, आपको अपनी बात जाके जो नुमाइंदे हैं राज्य सरकार के उनके सामने अपनी बात रखनी चाहिए थी, उनको बताना चाहिए था कि ये गलत हो रहा है, क्यों कुछ कदम नहीं उठा रही है सरकार?
देखो मैं तो एक साहित्यकार हूँ और मैं ये अवार्ड जब तक मैं वापिस नहीं करता तब तक उनको इतना आघात नहीं लगेगा, मैं अगर जाके बोलता तो वो मेरी बात नहीं सुनता, सरकार में मेरी आवाज कौन सुनेगा। मगर मैंने जब ये कहा कि राज्य सरकार का अवार्ड है वो मैं वापस कर रहा हूँ, तब जाके उनको आघात लगा कि ये तो गलत बात है।
तो आघात लगने का नतीजा क्या हुआ है? अब
नतीजा तो अभी मैंने अवार्ड वापस दिया है, राज्य सरकार की ओर से ना तो किसी ने मुझे समझाने की कोशिश की है, ना तो मेरी बात सुनने की कोशिश की है, केवल मीडिया में जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे उसी ने कुछ कहा कि ये अवार्ड वापस देना ठीक नहीं है, उसके अलावा और कुछ नहीं हुआ है।
अच्छा, जो राज्य में बीजेपी के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हैं
रूपाणी जी, हाँ उसने ऐसा कहा कि ये जो अवार्ड वापस देने का मामला है वो ठीक नहीं है।
मुझे ये बताइए कि ये जो बरसों से ये चलती आ रही है स्थिति इस तरह की, इसको रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए?
उसके रोकने के लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने एक बहुत ही बड़ा क्या बोला जाता है कि जो संविधान दिया है वो समता, समानता और न्याय के आधार पर चलने वाला समाज की रचना के लिए जो संविधान दिया है उसी संविधान को अच्छी तरह से लागू करना चाहिए।
दलित लेखक अमृतलाल मकवाना, जिन्होंने अपना गुजरात सरकार से मिला पुरस्कार वापस किया है दलितों पर हुई मारपीट के विरोध में, उनसे बात कर रही थी हमारी सहयोगी सुशीला सिंह।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
बीबीसी रेडियो पर आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, और आइए अब रुख करते हैं अगली खबर का। नेपाल के तराई इलाकों में भारी बारिश के चलते बिहार के 8 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बन गई है। 17 लाख से ज्यादा लोग इसकी चपेट में हैं। इन 8 जिलों में सबसे बदतर हालत पूर्णिया के हैं। बाढ़ के कारण 17 लोगों की जान भी गई है। राज्य का आपदा प्रबंधन विभाग जहां स्थिति पर नियंत्रण का दावा कर रहा है, वहीं बाढ़ से प्रभावित लोग राहत कार्य में देरी से काफी नाराज हैं। पूरा ब्यौरा भेजा है पटना से सीटू तिवारी ने।
आज ना हो गया, पानी में खड़ा हुआ हुआ माल मवेशी हम लोगों के बीमार हो गया है पानी में खड़े खड़े। अभी तक हम लोगों को कोई साधन, कोई सरकार के द्वारा कोई अभी तक चपरासी तक भी यहाँ नहीं आया है।
राम जवाहर यादव बीते 5 दिन से पानी में फंसे हैं। वो सुपौल के खोखाना गांव के हैं। पेशे से किसान राम जवाहर ने कुछ दिन पहले ही कुछ रुपयों की व्यवस्था करके अपनी बूढ़ी माँ को गांव से बाहर निकाल दिया है, लेकिन खुद राम जवाहर गांव में अपने जानवर और बूढ़े पिता के साथ फंसे हैं। राम जवाहर ने बीबीसी को फोन पर बताया कि उनके पास कोई सरकारी मदद नहीं पहुंची है। कभी कभी उन्हें सरकारी नाव या स्टीमर नजर आती है, लेकिन नाव वाले भी उन्हें बाहर निकालने के लिए रिश्वत मांगते हैं।
जो भी आता है तो 200-400 रुपया मांगता है। ठीक जो है हम लोगों को सिटोल से निकालते हैं। एक आदमी को 200-600 रुपया लेता है। एक अगर माल को कपाते हैं मवेशी को तो 200 रुपया मांगता है। 200 रुपया देकर के फिर 300-400 रुपया देकर के हम लोग मजबूरी निकालना पड़ता है बाहर को।
बिहार में बाढ़ से 8 जिले प्रभावित हैं। पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, दरभंगा, मधेपुरा, भागलपुर, कटिहार और सुपौल के 1448 गांव इसकी चपेट में है, जिससे 17 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित हुई है। बागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा, झावा नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव व्यास जी ने बताया,
ये बाढ़ की स्थिति अभी नियंत्रण में है, लेकिन 3 जिलों में बाढ़ थोड़ी गंभीर बनी हुई है। किशनगंज में, पूर्णिया में, अररिया में, और अभी कदवा जो अंचल है कटिहार का, वहाँ पर भी महानंदा में पानी ज्यादा आने की वजह से कुछ कठिनाई पैदा हुई है।
सरकार की तरफ से बाढ़ प्रभावित इलाकों में चूरा, गुड़, सत्तू, दिया सलाई, मोमबत्ती, पॉलिथिन शीट, सूखा राशन बांटा जा रहा है। हालांकि बीबीसी से बातचीत में लोगों ने इस राहत के दावे को खारिज किया है।
अभी जल मंगल है सर, नहीं वाला 50,000 आदमी मांगता है, 9 पर चढ़ाते हैं, वो कर आई है जो हम लोग 50,000 आदमी लीजिएगा, 200-300 मंगता है, एक बैल पर एक भैंस पर।
इस बीच बाढ़ से मरने वालों की संख्या 17 पहुंच गई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से अपील की है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें। साथ ही प्रभावित जिलों के अधिकारियों को भी प्रभावित इलाकों में इसका प्रचार प्रसार करने को कहा गया है।
एडवाइजरी जारी किया था कि नदियों में उफान है, पूरे बिहार के लिए जारी किया था कि नदियों में उफान है, क्योंकि उफान आते ही कई जिलों में ऐसा पाया गया कि बच्चे डूबने लगे। ने कहा था कि बच्चों को नहाने के लिए न भेजा जाए, और अगर भेजने की आवश्यकता ही हो तो किसी वयस्क के साथ भेजा जाए।
इस बीच राहत की खबर यह है कि गंडक बैराज से 3.5 लाख क्यूसेक पानी ही छोड़ा गया है। इससे पहले खबर थी कि 5.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। सीटू तिवारी, बीबीसी पटना।
बाढ़ की स्थिति असम में भी काफी खराब है, जहां तीसरी बार इस साल ये बाढ़ आई है। राज्य के कुछ इलाकों में कल कई नदी बांधों के टूटने से बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई। वहां अब तक बाढ़ के कारण 15 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के 21 जिलों में करीब 3,000 गांव बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं, और राज्य में बाढ़ की भयावह स्थिति को देखते हुए असम विधानसभा के जारी बजट सत्र को अगले 3 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। गुवाहाटी से दिलीप शर्मा की रिपोर्ट सुनिए।
असम में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण बाढ़ ने भयावह रूप धारण कर लिया है। बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या करीब 17 लाख हो गई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ताजा रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 472 राहत केंद्र खोले गए हैं, जिनमें 1,12,000 से अधिक बेघर हुए लोगों ने शरण ले रखी है। राज्य में बाढ़ से गंभीर हुए हालातों को देखते हुए कल असम विधानसभा के जारी बजट सत्र को अगले 3 दिनों के लिए स्थगित कर दिया है। सभी विधायकों को उनके इलाकों में जाने के लिए कहा गया है। बाढ़ से वैसे तो राज्य के 21 जिले प्रभावित हैं, लेकिन इस समय बरपेटा, धेमाजी, जोरहाट और मोरीगांव जिले में हालात काफी चिंताजनक हैं। मुख्यमंत्री खुद अपने चुनावी क्षेत्र के लोगों का हाल जानने माजुली का दौरा करेंगे। माजुली में मौजूद जोरहाट जिले के DC वीरेंद्र मित्तल ने BBC से कहा,
यहाँ पे देखिए बिकॉज पिछले 2-3 दिनों से ब्रह्मपुत्र का जो जलस्तर है वो बढ़ रहा था, आज लेकिन कमा है। बट कल 4:30 के लगभग एक जो बनगांव करके जगह है वहाँ पे एम्बैकमेंट है ब्रह्मपुत्र का, वो ब्रीच हुआ और आज तकरीबन 25 मीटर हो गई, तो उसकी वजह से काफी 12 से 13 गाँव में पानी भर गया। तो इसकी वजह से अब हमारे टोटल कुल मिला के 9 रिलीफ कैंप हो गए, जिसमें तकरीबन 9,500 लोग, टोटल पॉपुलेशन अफेक्टेड जो फ्लड से है माजुली में वो तकरीबन 1 लाख है। सिचुएशन थोड़ी चिंताजनक है लेकिन कंट्रोल में है। तो और वाटर रिसोर्स और हमने आर्मी को भी रिक्वायजेशन किया है।
बाढ़ से पैदा हुई इस स्थिति से बेबस सरकार का मानना है कि अभी हालातों को सुधरने में 2-3 दिन और लगेंगे, क्योंकि सीमावर्ती राज्यों में लगातार बारिश हो रही है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कुमार शर्मा,
कोकराझार बोंगाईगांव में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया है, इधर गोलाघाट जोरहाट में स्थिति गंभीर बनी हुई है। इसके मुताबिक 2 तारीख बारिश होने वाली है। असम, मेघालय और अभी सूचना मिली है हमें, इसमें से अभी भी डेंजर लेवल पे ही है और हाईएस्ट फ्लड लेवल से नीचे है, परंतु असम का फ्लड ऐसा है जिसका अब तक सोल्यूशन नहीं निकला है। ये पहले 1-2 चरण में तो तबाही इतनी बड़ी नहीं थी, इस बार तबाही काफी।
असम में इस साल ये 3री बार बाढ़ आई है, जिसमें अब तक 15 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 2 लाख हेक्टेयर खेती की जमीन बाढ़ के पानी में डूबी हुई है और अभी ये कहना मुश्किल है कि ये भयावह स्थिति राज्य में अगले कितने दिनों तक और रहेगी। दिलीप कुमार शर्मा, BBC गुवाहाटी।
और आइए आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं आज के अखबारों पर। संदीप सोनी अखबारों के साथ आ चुके हैं। संदीप, ये क्या खबर दिख रही है कि उत्तराखंड में चीनी घुसपैठ की बात हो रही है?
हाँ, ये जनसत्ता समेत तमाम अखबारों के पहले पन्ने पर खबर है। खबर ये है कि उत्तराखंड के चमोली के वो इलाके जो चीन की सीमा से लगते हैं, उस इलाके में चीन के सैनिकों ने घुसपैठ की है। ये खबर तमाम अखबारों में है। और निखिल, उत्तराखंड की ही सरकार राज्य में संजीवनी बूटी की तलाश कर रही है।
ये वही संजीवनी बूटी है
जी हाँ, जिसका उल्लेख हिंदुओं के आराध्य देव हनुमान जी के संदर्भ में आता है, जिसकी तलाश में वो गए थे। कहा जाता है कि पूरा पर्वत उखाड़कर भगवान राम के सम्मुख ले आए थे ताकि लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर की जा सके। उसी कथित संजीवनी बूटी की तलाश के लिए उत्तराखंड में 3 विभागों की एक समिति बनाई गई है। ये खबर हिंदुस्तान टाइम्स में छपी है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि गाय का संरक्षण किया जाना चाहिए, लेकिन गाय के संरक्षण के नाम पर आजकल दलितों और मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। अखबार है स्टेट्समैन, इसमें यह खबर है। वहीं इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर कहती है कि तमिलनाडु में 250 दलित परिवार इस्लाम को अपनाने की योजना बना रहे हैं। गांव देहात में रहते हैं ये दलित परिवार, जिन्हें स्थानीय मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं है। खबर में ये भी कहा गया है कि कुछ मुसलमान संगठन गांव में कुरान की प्रतियां बांट रहे हैं और ईसाई मिशनरी भी इन दलितों को संपर्क कर रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मंदसौर ज़िले में गौमांस के संदेह में 2 मुसलमान महिलाओं की पिटाई, प्रधानमंत्री मोदी मेरी हत्या करवा सकते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये बयान, और पहलवान नरसिंह यादव दूसरे टेस्ट में भी फेल हो गए हैं। ये वो खबरें हैं जो हर अखबार के पहले पन्ने पर है। और निखिल, एक खबर और जो हाल में हमने देखा है कि भारतीय मौसम विभाग मानसून की भविष्यवाणी करता है, बारिश कम होगी, ज़्यादा होगी, गर्मी कम पड़ेगी, ज़्यादा होगी, लेकिन अक्सर वो भविष्यवाणी गलत साबित होती है। लेकिन अब उम्मीद है कि अगले बार से जब भारतीय मौसम विभाग भविष्यवाणी करेगा तो गलत नहीं उतरेगी। एक सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है जिसके दम पर भारतीय मौसम विभाग सटीक भविष्यवाणी कर सकेगा। द हिंदू के पहले पन्ने पर सबसे ऊपर ये खबर छपी है।
बहुत शुक्रिया संदीप इस पूरी अखबारों की समीक्षा के लिए। और आइए अब रुख करते हैं अगली खबर का जो आ रही है उत्तर प्रदेश से। भारतीय जनता पार्टी से बाहर किए गए नेता दयाशंकर सिंह को लेकर राजनीति नहीं थम रही है। आज भारतीय जनता पार्टी की महिला शाखा लखनऊ में नसीमुद्दीन सिद्दीकी की गिरफ्तारी के लिए फिर से प्रदर्शन करने वाली है। हालांकि बुधवार को दयाशंकर सिंह के झारखंड के देवघर में देखे जाने की खबरें आई थी, कई जगह तस्वीरें भी दिखी। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट में दयाशंकर सिंह की गिरफ्तारी से बचने की से संबंधी याचिका पर भी सुनवाई होगी। लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र ने घटनाक्रम पर नजर रखी है, उन्हीं से सुनिए पूरा हाल।
अभद्र भाषा का मामला अभी ठंडा पड़ता नहीं दिख रहा है। एक ओर जहां दयाशंकर सिंह के समर्थन में कई संगठन और लोग आ रहे हैं, वहीं बीएसपी उनकी गिरफ्तारी की मांग को बार बार दोहरा रही है। गुरुवार को जहां दयाशंकर सिंह के गृह जनपद बलिया में उनके समर्थन में कुछ छात्रों ने बंद कराया, वहीं आज भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा उनकी पत्नी और बेटी के लिए इस्तेमाल किए गए अभद्र भाषा के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं की मांग है कि बीएसपी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। यूपी बीजेपी की महामंत्री अनुपमा जायसवाल कहती हैं,
पूरा शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, कोई इसका सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा है कि कब तक महिलाओं के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाएगा। लोग चुप बैठेंगे, अब बात बहुत ऊपर आ गई है, महिलाओं को आगे आते सवाल पूछना ही पड़ रहा है। आज स्थिति हमारी ये हो गई है कि 8 साल की छोटी सी बच्ची को भी अपशब्द कहते हुए किसी को जरा से भी शर्म नहीं आती। हम किस समाज की ओर जा रहे हैं? ये तो बिल्कुल एक मतलब कहना चाहिए असभ्य और बर्बर समाज की ओर जाने वाली मानसिकता बन रही है।
उधर दयाशंकर सिंह के मामले में बहुजन समाज पार्टी के भीतर भी विरोध के स्वर बाहर आने लगे हैं। कल पार्टी के 2 विधायकों ने खुलेआम बीएसपी छोड़ने का ऐलान कर दिया। लखीमपुर से बीएसपी विधायक रोमी साहनी और हरदोई से बीएसपी विधायक ब्रजेश कुमार ने दयाशंकर सिंह के परिवार पर हुई टिप्पणियों से नाराज होकर पार्टी छोड़ दी। रोमी साहनी ने बीबीसी को बताया,
दयाशंकर जी ने जो बोला वो भी गलत बोला, हम निंदा करते हैं, लेकिन जो चौराहे पे इन लोगों ने बोला वो भी बहुत निंदनीय है। किसी की 12 साल की बेटी के लिए पेश करो, इसलिए तो देश सरुसार हुआ है भैया। इसमें करीब आप ये मान लीजिए बहुजन समाज पार्टी के 40 विधायक नाराज हैं, बिल्कुल क्या नहीं है, लेकिन सब आ जाएंगे धीरे धीरे।
इस बीच दयाशंकर सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद पुलिस को उनका कुछ भी पता नहीं चल सका है। वहीं गुरुवार को दयाशंकर सिंह के देवघर में दिखने की चर्चा राजनीतिक हलकों में होती रही। दयाशंकर सिंह ने हाईकोर्ट में गिरफ्तारी से बचने के लिए एक याचिका दे रखी है, आज उस पर सुनवाई होनी है। दयाशंकर सिंह के वकील दिलीप श्रीवास्तव कहते हैं,
हमारी सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट यही है कोर्ट से कि इनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। गलत आरोप है, बुनियाद आरोप है, बाकी हम अंदर जो रिट में पेंडिंग है, जो माननीय न्यायालय में जाने वाली उस चीज को तो नहीं कर सकते ग्राउंड। और
बहरहाल दयाशंकर सिंह की गिरफ्तारी भले ही पुलिस के लिए चुनौती बनी हो, लेकिन राजनीति में लोगों को एक मुद्दा जरूर मिल गया है। जानकारों का कहना है कि इस मामले में आज के लिए 2 चुनौतियां प्रमुख होंगी। क्या पुलिस दयाशंकर सिंह को गिरफ्तार कर पाती है और क्या बीजेपी का महिला मोर्चा पुलिस के ऊपर नसीमुद्दीन सिद्दीकी की गिरफ्तारी का दबाव बना पाता है? समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
अमेरिका में हिलरी क्लिंटन को डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार तो चुन लिया गया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से उनका मुकाबला कैसा रहेगा, अब सारा ध्यान इस पर है। वहां दक्षिण एशियाई मूल के लोगों की भी अच्छी खासी संख्या है। हमारे सहयोगी सलीम रिजवी ने इन लोगों से पूछा कि उनकी पसंद कौन है, सुनिए उनका जवाब।
फिलाडेल्फिया शहर में जारी डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन के आखिरी दिन हिलरी क्लिंटन औपचारिक तौर पर उम्मीदवारी ग्रहण करेंगी और अब अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन और रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी मशहूर व्यवसायी डोनाल्ड ट्रंप के बीच आमने सामने का मुकाबला शुरू हो गया है। लेकिन फिलाडेल्फिया शहर में रहने वाले लोग, खासकर दक्षिण एशियाई मूल के लोग भी हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बटे हुए नजर आ रहे हैं। कुछ को लगता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी को 8 साल राज करते हो गए, अब रिपब्लिकन पार्टी को फिर सत्ता में लाना चाहिए, तो कुछ लोग हिलरी क्लिंटन को अनुभवी राजनीतिक मानते हुए उन्हीं को व्हाइट हाउस पहुंचाना चाहते हैं। भारतीय मूल के अमरीकी अतुल पटेल फिलाडेल्फिया शहर में पिछले 25 वर्षों से रह रहे हैं। वो शहर के बीचों बीच स्थित सेंटर सिटी इलाके में एक न्यूज स्टैंड के मालिक हैं।
हम तो आई एम इंडिपेंडेंस बट आई लाइक ट्रंप। पब्लिक को भी चेंज चाहिए क्योंकि अमेरिका में जो हिस्ट्री देखो तो हर 8 साल में तो पावर बदलता ही है। क्लिंटन ने 8 साल किया, उसके बाद रिपब्लिकन आया, बाद में डेमोक्रेट आया, बाद में भी रिपब्लिकन। मेरे ख्याल से
ट्रंप का चांस बनता है
उसके राजयोग जिसके लिखा है वो आएगा, जिसके तकदीर राजयोग लिखा होगा वही आएगा क्या, हम तो वोट देंगे, आना ना हो उसकी तकदीर की बातें।
लेकिन कई दक्षिण एशियाई मूल के लोग हिलरी क्लिंटन को ज्यादा बेहतर विकल्प मानते हैं। बांग्लादेशी मूल के अमरीकी मोहम्मद अली उस्मान डेमोक्रेटिक पार्टी को पसंद करते हैं और खासकर हिलरी क्लिंटन को राष्ट्रपति पद के लिए बहुत अच्छा उम्मीदवार मानते हैं।
Hillary is best, you know, she may be following the Clinton, that's what I want. And I hope, I wish her good luck.
बांग्लादेशी मूल के मोहम्मद अली उस्मान कह रहे थे, मैं तो हमेशा डेमोक्रेट को ही वोट देता हूँ और इस बार तो हिलरी सबसे अच्छी उम्मीदवार है। उम्मीद है कि वो बिल क्लिंटन की तरह ही काम करेंगी, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। भारतीय मूल के राजेश सिंह दाना मंडी नाम की जनरल स्टोर के मालिक हैं और पिछले 26 साल से फिलाडेल्फिया शहर में रह रहे हैं। राजेश सिंह को भी डेमोक्रेटिक पार्टी से ज्यादा उम्मीदें हैं।
जो डेमोक्रेट हैं वो मेरे ख्याल से बेटर जॉब करते हैं, रिपब्लिकन नहीं करते हैं, तो वोट जिसको भी पानी है वो तो उनका खुद का राइट है, जिसको दिल करता पाओ।
उधर डेमोक्रेटिक पार्टी में सभी हिलरी क्लिंटन की उम्मीदवारी से खुश नहीं है। हिलरी क्लिंटन के पूर्व प्रतिद्वंदी बर्नी सैंडर्स के कई समर्थक अब भी हिलरी क्लिंटन को वोट देने को तैयार नहीं लगते। श्रीलंकाई मूल के अमरीकी टेरेंस फर्नांडो पेशे से वकील हैं और बर्नी सैंडर्स के समर्थक हैं। टेरेंस फर्नांडो हिलरी क्लिंटन के खिलाफ विरोध रैलियों में भी शामिल होते हैं। फर्नांडो कहते हैं,
I wrote several emails saying that, you know, how can you support this woman who we all we know are corrupt.
वो कह रहे थे, मैंने ईमेल लिखकर ये पूछा है कि हिलरी क्लिंटन को बर्नी सैंडर्स कैसे समर्थन दे सकते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये महिला भ्रष्ट हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी की कमेटी के साथ मिलकर इन्होंने बर्नी सैंडर्स के साथ छल किया है। ये थे श्रीलंकाई मूल के टेरेंस फर्नांडो के शब्द। शहर में कई जगह बर्नी सैंडर्स के हजारों समर्थक हिलरी क्लिंटन का खुलकर विरोध करते नजर आ रहे हैं। इनमें कई समर्थक ये मानते हैं कि अब बात बर्नी से आगे निकल चुकी है और अब वोटरों को खुद प्रयास करके देश की राजनीति को बदलना होगा। इनमें बहुत से ऐसे भी बर्नी समर्थक हैं जो कहते हैं कि वो न तो ट्रंप को वोट देंगे और न क्लिंटन को। सलीम रिजवी, फिलाडेल्फिया।
ओलंपिक में नरसिंह यादव की जगह प्रवीण राणा जाएंगे और आईसीसी रैंकिंग में अश्विन नंबर 1 बन गए हैं। खेल समाचार में और क्या है, सुनिए रजत चांदना से।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं रजत चांदना। सबसे पहले बात ओलंपिक की। अगले महीने से ब्राजील के रियो में होने वाले ओलंपिक से पहले ही भारतीय दल को नरसिंह यादव के डोप टेस्ट में फंसने की वजह से रेसलिंग फेडरेशन ने नरसिंह की जगह प्रवीण राणा को ओलंपिक का टिकट दे दिया है। रियो ओलंपिक में 74 किलोग्राम वर्ग में फ्री स्टाइल रेसलिंग के लिए अब भारत का प्रतिनिधित्व प्रवीण राणा करेंगे। यही नहीं, डोपिंग की जाँच करने वाली एजेंसी नाडा नरसिंह यादव के मामले की सुनवाई कर रही है। डोप टेस्ट में फेल हुए नरसिंह यादव के पास अनुशासन समिति के सामने बेगुनाही साबित करने का मौका है। नाडा की जाँच में नरसिंह के ए और बी दोनों नमूनों में प्रतिबंधित मेथाडोनियन नाम का स्टीरॉयड पाया गया था। वहीं क्रिकेट में भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्र अश्विन एंटीगा में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन की बदौलत आईसीसी की टेस्ट गेंदबाजी की रैंकिंग में फिर से पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। अश्विन 2015 में साल के अंत में शीर्ष रैंकिंग पर थे। उन्होंने टेस्ट मैच की दूसरी पारी में 83 रन देकर 7 विकेट चटकाए, जिससे वो गेंदबाजी की रैंकिंग में पहला स्थान हासिल करने में सफल रहे। वहीं कप्तान विराट कोहली की एंटीगा में 200 रन की पारी की मदद से वो दो पायदान के फायदे से 12वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि सलामी बल्लेबाज शिखर धवन 84 रन बनाकर 4 पायदान का फायदा हासिल करने में सफल रहे। पूर्व भारतीय खिलाड़ी निखिल चोपड़ा ने बताया कि ऐसे प्रदर्शन से भारतीय खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा।
बहुत बढ़िया गेंद उनके हाथ से निकल रहा है, हरफन मोला खिलाड़ी की छाप अपने ऊपर लगा रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने टेस्ट मैच में शतक लगाया, 7 विकेट हासिल की, तो सब कुछ अश्विन के लिए और साथ में भारतीय टीम और विराट कोहली के लिए अच्छा चल रहा है।
उधर श्रीलंका के महान स्पिनर मुथैया मुरलीधरन को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने इस साल हॉल ऑफ फेम में शामिल करने का फैसला किया है। उन्हें खेलों में उनके योगदान के लिए हॉल ऑफ फेम कैप्स भी दी जाएंगी। विश्व कप 2011 के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने वाले मुरलीधरन ने टेस्ट में 800 विकेट लिए हैं और वनडे में 534 और T20 क्रिकेट में 13 विकेट लिए हैं।
खेल समाचारों के साथ ही नमस्कार, भारत का ये अंक पूरा होने को है, तो आइए सुन लेते हैं प्रमुख समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। भारत के एक राज्य मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में कथित गौमांस रखने के लिए दो मुसलमान महिलाओं के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। ईमेल हैकिंग संबंधी विवाद की पृष्ठभूमि में डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन ने अपने रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी डोनाल्ड ट्रंप पर अमेरिकी सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाया है। तुर्की के अधिकारियों ने बीती 15 मई को तख्ता पलट की नाकाम कोशिश के बाद कई मीडिया संगठनों को बंद करने की घोषणा की है। फ्रांस में कई प्रमुख मीडिया संस्थानों ने कहा है कि वो चरमपंथी हमलों के जिम्मेदार हत्यारों की तस्वीरें अब नहीं छापेंगे। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुना रहे थे संदीप सोनी और आज स्टूडियो संभाल रहे हैं शाकिर आलम। आपसे एक घंटे बाद विश्व भारती में फिर मुलाकात होगी। तब तक खबरें देखनी है तो आइए bbchindi.com पर। निखिल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।